नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। भारत और इटली ने कृषि, दुर्लभ खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, समुद्री परिवहन और बंदरगाह के क्षेत्र में सहयोग को और बढ़ाने के लिए 15 महत्वपूर्ण समझौते किए हैं। इन समझौतों पर रोम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद हस्ताक्षर किए गए। दोनों देशों ने भारतीय नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने के लिए भी एक समझौता किया है। एक अन्य समझौता लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास पर केंद्रित है। दोनों देशों ने कर से जुड़े अपराधों, धनशोधन और आतंकवाद के लिए पैसे जुटाने के खिलाफ तालमेल को मजबूत करने पर भी सहमति व्यक्त की है। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने घोषणा की कि भारत और इटली ने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का फैसला किया है।
हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश भारत इटली नवाचार केंद्र स्थापित करने पर काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि दोनों देश जहाजरानी, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में भी मिलकर काम करेंगे। इटली की प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच की दोस्ती सम्मान और आपसी विश्वास पर आधारित है। इसके बाद रोम में प्रधानमंत्री मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। उन्होंने इस सम्मान को भारत के लाखों किसानों, पशुपालकों, कृषि वैज्ञानिकों और श्रमिकों को समर्पित किया। गृहमंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने प्रधानमंत्री मोदी को एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। श्री शाह ने कहा कि ये सम्मान देश के करोड़ों किसानों और कृषि क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों को समर्पित है। सुश्री सीतारामन ने कहा कि मोदी सरकार ने कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के एक मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र में परिवर्तन का प्रमाण बताया है। दक्षिण कोरिया में प्रवासी भारतीयों से बातचीत में रक्षा मंत्री ने कहा कि यह ऑपरेशन इस बात का प्रमाण है कि भारत किसी भी रूप में आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले की फलता विधानसभा सीट पर आज पुनः मतदान होगा। दो निर्दलीय उम्मीदवारों सहित कुल 6 उम्मीदवार मैदान में हैं। तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान ने मंगलवार को घोषणा की कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। हालांकि नाम वापस लेने की समय सीमा समाप्त हो चुकी है, इसलिए औपचारिक रूप से उनका नाम मतपत्र पर बना हुआ है। भाजपा के उम्मीदवार देबांशु पांडा हैं। कांग्रेस ने अब्दुल रजाक मोल्ला को मैदान में उतारा है, जबकि सीपीआईएम ने शंभूनाथ कुर्मी को उम्मीदवार बनाया है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव के बीच अमरीकी नौसेना ने ओमान की खाड़ी में ईरानी झंडे वाले एक वाणिज्यिक तेल टैंकर को रोककर उसका मार्ग बदल दिया। अमरीकी सेंट्रल कमांड के अनुसार एमटी सेलेस्टियल सी नामक टैंकर की तलाशी ली गई। इस पर ईरानी बंदरगाह की ओर जाने का संदेह था। अमरीका ने इस साल अप्रैल में ईरानी जहाजों पर नाकाबंदी लागू की थी। अमरीका का कहना है कि इस नाकाबंदी से ईरान को रोज करीब $50 करोड़ का नुकसान हो रहा है। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हरा दिया। मनीष पांडे को प्लेयर ऑफ द मैच दिया गया। आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।